आपसे चलें शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वइन्ना अल्लाह लमअल मुहसिनीन। سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا رزقا. تو اس کلاس میں ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دہشتی زیور سے کتاب السلوک والاحسان پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں پہلا باب جو حضرت نے رکھا تھا وہ تھا اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج، اور اس کے بعد دوسرا باب تھا اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے۔ تو یہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیے تھے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے تیسرا اس کا حصہ شروع کیا تھا شیخ کامل کے ساتھ تعلق۔ تو کچھ تمہید وغیرہ کے بعد پھر پیری مریدی کا بیان، یہ جو پہلے چند نکات تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، غالباً ہم تیسرا فائدہ پڑھ چکے تھے یا چوتھا بھی پڑھ چکے تھے، نشان لگانا بھول گیا تو اب یاد نہیں ہے۔ بہرحال اس کا ایک ریکیپ تو کرنا ہی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اصلاح باطن کے جو طریقے مذکور ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے میں کبھی کم فہمی سے غلطی ہو جاتی ہے، شیخ کامل اس کا صحیح راستہ بتا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بسا اوقات اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا شیخ کے وعظ و نصیحت اور ہدایات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ کی بات میں اثر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کتابوں سے ویسا اثر نہیں ہوتا جیسے شیخ کی بات سے اثر ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اسی کے مطابق چلیں۔ محبت کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی کی بات ماننے میں۔ ایک تو مجبوراً خوف کی وجہ سے بات مانی جاتی ہے، اور دوسری وجہ بات ماننے کی محبت ہوتی ہے۔ تو شیخ کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ محبت اور اعتقاد پیدا کر دیتے ہیں، شیخ کے ساتھ کیسے محبت اور اعتقاد پیدا کر دیتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیخ کے ذریعے سے اس کو کچھ فائدے پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ فائدے پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کو جہاں سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے جیسے ماں باپ سے محبت جو ہے وہ بھی انسان کو فائدے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ سے فلانے فائدے مل رہے ہیں، فلانا فائدہ مل رہا ہے، وہ اس طرح اس کا خیال کر رہے ہیں، وہ اس طرح اس کے لیے ایثار کا معاملہ کر رہے ہیں، فکر کا معاملہ کر رہے ہیں، تو قدرتاً اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شیخ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اصل میں پیچھے تو اللہ رب العزت کی ذات کار فرما ہوتی ہے۔ تیسرا، ہاں تیسرا ہو گیا۔ پھر چوتھا فائدہ یہ، پیر اگر نصیحت کرنے میں سختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا، پھر اس نصیحت پر عمل کرنے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے ماں باپ سے جب محبت ہوتی ہے تو وہ سختی یا غصہ بھی کرتے ہیں تو ناگوار نہیں ہوتا، حالانکہ ہوتا تو ہے۔ تو اس کی وجہ آپ بتا دیں کہ ماں باپ جب سختی غصہ کرتے ہیں تو کب ناگوار ہوتا ہے اور کب ناگوار نہیں ہوتا، یا کس اولاد کو ناگوار گزرتا ہے اور کس اولاد کو ناگوار نہیں گزرتا۔ چلیں وقت آئے مطلب وقت اس میں لگانے کی بجائے سیدھی سی بات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جیسے ابھی پیچھے بتایا تھا نا محبت، تو محبت کی وجہ سے پھر اطاعت کرنی آسان ہو جاتی ہے، اسی طرح سے محبت کی وجہ سے جو ہے وہ ڈانٹ اور ناگواری بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ تو اب اولاد کو جو ہے نا جب माँ बाप से से जो है वो खालिसतन मुहब्बत होती है, या यकसुई होती है माँ बाप के साथ औलाद को, तो उनकी मोहब्बत जो होती है ना वो भी यकसू होती है, तो इस वजह से उनकी डांट डपट जो है वो उसको बुरी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन जब इस मोहब्बत के अंदर यानी माँ बाप की मोहब्बत के अंदर दूसरों की मोहब्बत भी, बल्कि माँ बाप की मोहब्बत के साथ साथ दूसरों की मोहब्बत भी उसके दिल के ऊपर गालिब आनी शुरू हो जाती है ना, तो उस वक्त फिर माँ बाप की डांट नागवार गुजरती है। क्या ख्याल है, गलत या सही, ये आप बता दें, अगर इतना ही बता दें, जवाब नहीं पूछ रहे, जो सवाल था वो तो हमने खुद ही जवाब बता दिया, लेकिन गोया के वेरीफाई करवा रहे हैं आपसे, क्या ख्याल है कि जब माँ बाप की मोहब्बत के साथ दूसरों की मोहब्बत भी अंदर आना शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर माँ बाप की बात जो है वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है, डांट डपट जो है वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर स्कूल जाता है, ठीक है, तो स्कूल के अंदर जो दोस्तों की मोहब्बत जो है ना वो दोस्त बन जाते हैं, तो उनकी भी मोहब्बत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। कभी टीचर की मोहब्बत, स्कूल की टीचर की मोहब्बत ऐसी जो है वो पक्की हो जाती है, दोस्तों की मोहब्बत खास तौर पर दोस्तों की या सहेलियों की मोहब्बत, ठीक है ना, अब जो है ना माँ बाप की बुरी लगनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे केसों के अंदर तो ये भी होता है कि जब शादी हो जाती है, बेगम साहब आ जाती हैं, ठीक है, तो बेगम साहबा की मोहब्बत जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि अब माँ बाप की मोहब्बत जो है ना वो कम हो जाती है। तो देखें, बात यही है कि ये जो दिल है ना, दिल ये एक ही प्याला है, एक ही बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो मसला ये है कि इसकी कैपेसिटी है, जैसे मिसाल के तौर पर 100, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर इसकी इसकी कैपेसिटी है इसकी, है ना। तो इसके अंदर जो है ना ऐसा नहीं हो सकता कि पहले किसी की मोहब्बत थी तो अब दूसरे की मोहब्बत आ गई तो जो है ना वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और 120 मिलीलीटर हो जाएगी। तो अब जो है ना वो पहले वालों की मोहब्बत 100% थी, 100 थी, तो अब जो है ना वो जो नए आए हैं तो उनकी जो है वो 20 मिलीलीटर ऐड हो गई इसके अंदर, फिर कोई और आ गया तो उसकी मोहब्बत जो है ना वो 40 मिलीलीटर और ऐड हो गई, यानी दिल का साइज बढ़ रहा है, दिल की मोहब्बत की कैपेसिटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है दिल का मामला, दिल का मामला यह है कि इसकी कैपेसिटी जितनी है या उतनी ही रहेगी। तो अब जब किसी दूसरे की मोहब्बत आती है ना तो वो अपनी जगह बनाती है उसी कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, तो वो 100% अगर किसी एक की पहले मोहब्बत थी ना, जैसे माँ बाप की मोहब्बत 100% थी, तो अब जब दूसरे की मोहब्बत आएगी ना, दोस्तों की, सहेलियों की, तो वो माँ बाप की मोहब्बत घट जाएगी, ठीक है ना, वो 80% रह जाएगी और दोस्तों की मोहब्बत 20%, बाकी 20% दोस्तों की मोहब्बत हो जाएगी। फिर वो और बढ़ती रही तो माँ बाप की और कम होती चली जाएगी और दोस्तों की और बढ़ती चली जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब इनकी मोहब्बत कम हो रही है, उनकी मोहब्बत बढ़ रही है, तो अब इनके साथ वैसा मामला तो नहीं होगा ना जैसे कि पहले था, ठीक है ना। तो यही मामला होता है कि माँ बाप जो है वो दोस्तों के मामले में बिल्कुल बेफिक्र होते हैं और बड़ा समझते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना जितने दोस्त बनाएंगे और जितनी उनकी सोशलाइजेशन होगी इतना उनके लिए अच्छा है, लेकिन असल में वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। असल में माँ बाप जो है वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं कि दोस्तों के साथ जो है ना वो इतनी मोहब्बत जो है बच्चों की बढ़ा देते हैं, अपनी अपनी खुद की खुशी से बढ़वाते हैं, ठीक है, कि अब उनकी मोहब्बत जो है वो कम हो जाती है। अब ये तो चले माँ बाप की हद तक बात थी, ठीक है, लेकिन यही मामला जो है वो दूसरों के साथ भी होता है, हत्ता कि जब पीर उस्ताद के साथ इंसान की मोहब्बत होती है ना, तो वो मोहब्बत भी अगर कामिल मोहब्बत है, ठीक है ना, वो मोहब्बत कामिल मोहब्बत है, यानी अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इसकी मोहब्बत है, और पीर से जो मोहब्बत करी वो अल्लाह के लिए करी है, ठीक है ना, यानी ये नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो, अच्छा एक होता है किसी के लिए मोहब्बत करना, ठीक है, किसी के लिए मोहब्बत करना, जैसे माँ बाप की मोहब्बत 100% है, ठीक है ना, तो अब जो भाई बहन है, भाई बहन ये कहाँ से आए, भाई बहन ये माँ बाप ही से तो मिले हैं ना, माँ बाप के निस्बत से ही भाई बहन का ताल्लुक होता है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होता कि भाई बहन की जो मोहब्बत है, या ऐसा कम से कम होना चाहिए नहीं, है ना, कि माँ बाप की मोहब्बत जो है वो कम हो जाए, भाई बहन की मोहब्बत बढ़ जाए, बल्कि जो प्रॉपर तरीका है, जो प्रॉपर निस्बत है, वो क्या है, माँ बाप की वजह से भाई बहन से मोहब्बत है। तो अब जो भाई बहन की मोहब्बत होगी ना, ये माँ बाप की मोहब्बत के ताबे होगी, ये ताबे होगी। ये ताबे वाला कॉन्सेप्ट चलता है दिल के साथ। बहुत मुश्किल तो नहीं हो गया कहीं समझना या समझाना मेरे, बहुत मुश्किल तो नहीं हो गया। ताबे वाला मसला जो है ना, वो चलता है दिल के साथ, क्योंकि वो ना उसी 100% के अंदर ही, उसके तहत ही है, वो उसी की गोया कि एक एक परतौ है उसका, ठीक है। जबकि जो बाहर के दोस्तों की मोहब्बत थी, वो इनकी वजह से नहीं थी, वो माँ बाप की निस्बत से नहीं थी, वो स्कूल की निस्बत से थी, वो किसी और निस्बत से थी। तो उसने जो है ना फिर जगह बनानी शुरू कर दी अपनी। जबकि भाई बहन की जो मोहब्बत थी, ये माँ बाप की निस्बत से मोहब्बत थी, तो इसने अपनी जगह अलग से नहीं बनाई, बल्कि ये उसी में अकोमोडेट हो गई, माँ बाप की मोहब्बत के साथ ही अकोमोडेट हो गई, ठीक है। तो इस मिसाल को अगर हम समझ गए हैं, और उम्मीद है कि इसको समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सबके माँ बाप होते हैं, कोई बगैर माँ बाप के दुनिया में नहीं आया ना, ईसा अलैहि सलाम और आदम अलैहि सलाम के अलावा, आदम, हव्वा और ईसा, ठीक है ना, वो तो माँ बाप के बगैर आए थे, और ईसा अलैहि सलाम बाप के बगैर आए थे। बाकी आप में से कोई है जो कि माँ बाप या एक के बगैर आया हो दुनिया के अंदर? कोई भी नहीं आया, सब माँ बाप की वजह से इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजे हैं, माँ बाप के साथ ही भेजे हैं ना। तो इस मिसाल को समझना किसी इंसान के लिए मुश्किल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वाली मिसाल हम सब समझ गए, तो फिर पीर उस्ताद वाली मिसाल भी समझना आसान हो जाना चाहिए। ये और बात है कि हर एक का पीर उस्ताद होता नहीं है ना, लोगों ने जो है वो अपना इस्लाही ताल्लुक बनाया ही नहीं होता, बैत का ताल्लुक, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया के अंदर हैं जिनका पीर उस्ताद नहीं होता। इस वजह से माँ बाप की मोहब्बत को समझ करके तब ये वाली बात समझना आसान हो सकता है, ठीक है। किसकी मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, कैटेगराइज वाइज, कैटेगरीज वाइज बता दीजिए, किसकी मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। 10% जो है ना वो होनी चाहिए माँ बाप की, फिर उसके बाद 5% इतनी होनी चाहिए, यानी ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल नहीं किया करें, ठीक है, कि उसके बेवकूफ़ी का ही जवाब हो सकता है, उसके अलावा कोई जवाब नहीं हो सकता है, यानी अब आपको हम छटाक छटाक के हिसाब से बताएं, इतने छटाक जो है वो उनकी मोहब्बत होने, और इतने किलोग्राम उसकी मोहब्बत होनी चाहिए, और इतने ग्राम उसकी मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। शरीयत को समझें, दीन को समझें, तो इस सवाल का जवाब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना ये कोई यानी तराजू वाला मामला नहीं है कि इसमें तोल करके आपको मोहब्बतों की वेटेज बताई जाए, ठीक है। हुकूक देखें, अल्लाह ताला का हक सबसे ज्यादा है, 100% अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, 100%, ठीक है ना, पूरे दिल से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को मोहब्बत से मोहब्बत करना, पूरे दिल 100% अल्लाह के लिए, बाकी जितनी मोहब्बत है वो अल्लाह की निस्बत से मोहब्बत, अल्लाह की निस्बत के बगैर एक मोहब्बत भी जायज नहीं है, हराम है, हराम, पता है, हराम, जैसे सुअर खाना हराम है, शराब पीना हराम है, ठीक है, और पता है आपको क्या क्या हराम है, उसी तरह अल्लाह की निस्बत के बगैर कोई भी मोहब्बत होगी वो हराम होगी, हराम होगी, ठीक है। तो आपके सब सवाल जो है ना कि किसकी मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, कैटेगरीज वाइज बता दीजिए, इसका यही जवाब है, ठीक है ना। शौहर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की निस्बत के बगैर हो सकती है, वरना वो भी हराम है। ना माँ की मोहब्बत अल्लाह की निस्बत के बगैर हो सकती है, वरना वो भी हराम है। बाप की निस्बत भी अल्लाह की निस्बत के बगैर होगी तो बाप की मोहब्बत भी हराम है, और औलाद के साथ भी ऐसे ही मामला, औलाद का भी यही मामला, ठीक है। तो सब मोहब्बत की निस्बत अल्लाह ताला की साथ जुड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज एनी अदर मोहब्बत इज अ सोर्स ऑफ रिग्रेट एंड डिप्रेशन। रिग्रेट एंड डिप्रेशन तो आसान अल्फाज है ना, बड़े यानी मॉडर्न डे किस्म के अल्फाज हैं, लेकिन अजाब, ठीक है ना, अजाब का सबब बनेगी। और ये जो डिप्रेशन है, इसको अगर आप अजाब की नज़र से देख रही हैं, तो हाँ ये दुनिया का अजाब है, जबकि दूसरे अजाब नहीं आए हुए, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर सेट है, सिर्फ जो है ना वो डिप्रेस्ड है बंदा, तो ये दुनिया का अजाब है। और फिर उसके बाद दूसरे किस्म के अजाब होते हैं, जब मार पड़ती है, जिल्लत होती है, रुसवाई होती है, ये दुनिया के दूसरे अजाब है, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिरत का अजाब उससे ज्यादा पढ़ करके होता है। तो बहरहाल, तो पीर और उस्ताद की मोहब्बत, पीर की जो मोहब्बत है ना, वो अल्लाह की निस्बत ही से मोहब्बत है। तो इस वजह से जो है ना, वो इसमें ये नहीं होता कि ये कोई अलग मोहब्बत बन रही है और अल्लाह की मोहब्बत कम हो रही है, और ऐसा कोई मामला नहीं होता। जिसका होता है कि पीर की मोहब्बत की वजह से अल्लाह की मोहब्बत कम हो रही है, तो उसका मतलब यह है कि उसका पीर जो है ना, वो बदअकीदा पीर है। उसने किसी उल्टे सीधे इंसान को जो है वो अपना पीर बना दिया, जो कि अल्लाह की मोहब्बत के कम होने का सबब बन रहा है उसके लिए, ठीक है। बहरहाल, तो चौथा फायदा यह है कि पीर अगर नसीहत करने में सख्ती या गुस्सा करते हैं तो नागवार नहीं होता, फिर उस नसीहत पर अमल करने की ज्यादा कोशिश होती है। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं जो उन लोगों को हासिल होते हैं जिन पर अल्लाह ताला का फजल होता है। शेख कामिल की अलामत क्या, साइंस है शेख कामिल की अलामत क्या है। तो अब इसमें आगे पढ़ने से पहले एक हम लफ्ज को थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी सर्जरी कर लेते हैं। ये लफ्ज कामिल, कामिल का क्या मतलब है, ठीक है। तो कामिल का एक लफ्जी मतलब तो ये होता है मुकम्मल, कंप्लीट, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट से भी तो बहुत सारी बातें समझ में आती है ना। अल अशियाउ तारिफु बे अवादिहा, अशिया जो है वो अपने जिद से बात समझ में आती है, ठीक है। कि कामिल का लफ्ज अब इस 100% बिल्कुल कंप्लीट, क्या मतलब अपनी सिफात के अंदर बिल्कुल कंप्लीट, उसकी हर सिफत जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, उसका जिस्मानी एतबार से भी कामिल होना चाहिए, जैसा कि एक इंसान हो सकता है जिस्मानी एतबार से कामिल, राइट। या जो है वो रूहानी एतबार से कामिल होना चाहिए, या जो है वो जहनी सलाहियतों के एतबार से कामिल होना चाहिए, या जो है वो अच्छे अखलाक के एतबार से कामिल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इंसानों के अंदर जो कामिल इंसान थे वो सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम, और हर जमाने में जो नबी हुआ करते थे वो उस जमाने के हिसाब से वो कामिल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो, या नबी अलैहिस्सलाम जितने भी अलैहिस्सलाम जो है वो गुजरे हैं, वो कामिल इंसान थे अपने अपने उस कॉन्टेक्स के हिसाब से, अपने अपने रेफरेंस के हिसाब से। उनके बाद कोई इंसान जो है वो कामिल नहीं हो सकता। तो हर इंसान के अंदर नुक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर शेख कामिल क्यों कह रहे हैं, गोया कि यानी ऐसा लगता है कि 20वीं सदी 21वीं सदी के अंदर भी जो है वो कामिल लोग मौजूद हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कामिल का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए ना हमें बदकिस्मती से एक ऐसी मिसाल जहन में आई है जो कि इसके खिलाफ है। तो लेकिन बात समझाने के लिए कोई और मिसाल ही नहीं आ रही, ठीक है। तो वो अपने जमाने जाहिलियत के जमाने की मिसाल, जमाने जाहिलियत के दौर की मिसाल, जब हम क्रिकेट खेला करते थे, बरतानवी, खास बरतानवी खेल, और खास अमीरों का खेल, और खास जो है ना वो ग्लैमर वाला खेल। क्रिकेट के साथ मेरी नफरत किस वजह से है, अंग्रेज, और अंग्रेज के साथ तो खैर दूसरे भी रीजंस है ना, वो तो खैर अंग्रेज के गेम्स तो और भी बहुत सारे हैं, तो इस वजह से लोग कहते हैं अच्छा वो भी तो अंग्रेजों का गेम है, वो भी तो यूरोप का गेम है। नहीं, क्रिकेट एक अलग चीज है, ठीक है ना। क्रिकेट और अंग्रेज का जो है ना वो जो ताल्लुक है ना, वो फुटबॉल और अंग्रेज का वैसा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बहरहाल, तो बहरहाल बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिकेट से जो है ना वो शदीद नफरत है इस वक्त को, ठीक है। और मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम को शदीद मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जा करके मसला अटक जाता है, ठीक है। ये तो सभी चीज के खिलाफ है, वो वाला मसला आ जाता है फिर, ठीक है। बहरहाल, आपकी मर्जी है कि आप समझे ना समझे। एनीवे, तो क्रिकेट के दौर की जो है ना वो मिसाल समझ में आती है। अगर आप में से कोई बताए कि क्रिकेट से इसकी क्या मिसाल मिलती है, लेकिन पाकिस्तानी हो और इंडियन भी हो और क्रिकेट के तफसीलात ना पता हो, ये तो मुश्किल है, इतना तो आपको भी पता होगा क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट से शेख कामिल वाली क्या मिसाल मिलती है? क्रिकेट से शेख कामिल वाली क्या मिसाल मिलती है? आप बिला खौफ बेखौफ होकर के बता दें, आपको डांटेंगे नहीं कि आपको क्रिकेट का इतना क्यों पता है, ये हम इस पर डांटे पिलाएंगे। वो क्रिकेट से क्या मिसाल मिलती है इसकी? क्रिकेट में ना एक टर्म होती है, सही है, जो कि किसी प्लेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, कभी किसी प्लेयर के लिए। जी माशाल्लाह, ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया सही, तो सही पाकिस्तानी होने का सबूत दे दिया आपने, माशाल्लाह। चले, ये डांट नहीं, सब डांट नहीं दी है। ऑलराउंडर, ठीक है ना, ऑलराउंडर की टर्म होती है क्रिकेट के अंदर, तो वो किसके लिए इस्तेमाल की जा रही होती है? वो किसी ऐसे खिलाड़ी के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है जो कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है ना, क्रिकेट के मैच के मुख्तलिफ शोबों के अंदर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है, ठीक है ना। तो होता तो वो किसी एक क्वालिटी की वजह से उसको क्रिकेट टीम के अंदर शामिल किया जाता है, यानी अच्छा बॉलर होता है, या अच्छा बैट्समैन होता है, या अच्छा विकेट कीपर होता है, ठीक है ना, कोई एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उसको टीम में शामिल किया जा रहा होता है। लेकिन वो जब खेलता है ना, तो वो दूसरी चीजों के अंदर भी अच्छी क्वालिटी दिखा देता है, अच्छी सिफात दिखा देता है। तो वो अच्छा बॉलर था, लेकिन अच्छा बैट्समैन भी कभी बन करके दिखा देता है, अच्छा फील्डर भी जो है वो कभी बन करके दिखा देता है। तो ऐसे को फिर ऑलराउंडर कहना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% परफेक्ट होता है और उससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती है, और जो है ना उसको हर चीज जो है वो एकदम बेहतरीन उसके अंदर सिफात मौजूद होती है, नहीं, बल्कि उसको एक ऑलराउंडर, यानी वो सिर्फ बैट्समैन नहीं है, बल्कि उसको अच्छी बॉलिंग भी आती है, सिर्फ बॉलर नहीं है, उसको अच्छी बैटिंग भी आती है, और साथ साथ अच्छी जो है ना वो फील्डिंग भी करता है। ये नहीं है कि बॉल इधर से जा रही है, वो उधर तालियां बजाता हुआ बॉल इधर से निकल गई, ठीक है, तो ऐसी फील्डिंग नहीं करता वो, सही है। तो शेख कामिल की मिसाल भी जो है ना वो गोया के ऑलराउंडर, ठीक है। तो अब हजरत की जो है ना वो, अच्छा अब बाकी ये कि फिर उसको कामिल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया उसके लिए, ये भी जवाब अगर आप बता दें तो खुशी हो जाए कि किसी को बात समझ में आती है। कामिल का लफ्ज ऑलराउंडर के लिए क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है, ऑलराउंडर के लिए कामिल का लफ्ज, तो ये तो इनएक्यूरेट सा लफ्ज है, ठीक है भाई, कामिल तो 100% को कहते हैं, तो ऑलराउंडर तो 100% नहीं होता, तो फिर कामिल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी बड़ी अच्छी सी दलील है, अक्सर आपको सुनाते रहते हैं वो वाली दलील, ठीक है, अक्सर वो दलील जिक्र में आती रहती है। अब तो जवाब दे दें, ऑलराउंडर को कामिल क्यों कहा? या तो किसी को लिखने में टाइम लग रहा है, उम्मीद करते हैं, बिकॉज वन डजेंट नीड एनी अदर गाइडेंस अपार्ट फ्रॉम हिम। नहीं, ऐसी बात नहीं, खुसूसन मेडिकल प्रोफेशन के लोग तो ऐसी बात नहीं कर सकते, अपने पर्सनल केयर फिजिशियन के अलावा किसी और जगह से आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई इसकी इसकी जो दलील है या इसका जो जवाब है ना, उसका ताल्लुक है थोड़ा सा क्या कहते हैं, शरीयत के साथ, अगर आपको तो ज्यादा वाकफियत हो तो उसका आप जवाब आसानी से दे सकती हैं। जी माशाल्लाह, इन्होंने बिलाखिर लिख दिया, शायद लिखने की कोशिश करी होंगे इतनी देर से, लिल अक्सरे हुक्मुल कुल, हाँ अक्सर पर कुल का हुक्म लगा देते हैं, अक्सर पर कुल का हुक्म लगा देते हैं, यानी किसी के अंदर कोई चीज जब अक्सरियत के हिसाब से होती है ना, मेजोरिटी वाइज ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर कुल का हुक्म लगा देते हैं कि उसको कुल कह देते हैं, ठीक है। तो कामिल का भी लव जो है ना वो भी इसी तरफ इंडिकेट करता है कि भाई इसके अंदर अच्छी क्वालिटी ज्यादा है दूसरों के मुकाबले में, ठीक है, तो इसको जो है ना वो कामिल कहा जा सकता है, ठीक है, तो इस एतबार से कामिल का लफ्ज लगा देते हैं। दूसरों से कुछ बेहतर है, ये तो आपके गुमान के ऊपर है, बस थोड़ा सा ही बेहतर है, ज्यादा बेहतर नहीं, ठीक है, लेकिन बहरहाल अक्सर जो होता है ना वो होता है 50% से ज्यादा, तो उसको अक्सर कहा जा रहा होता है। तो बहरहाल, तो शेख कामिल की वजह से जो है ना बहुत कंफ्यूज होने की या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कामिल तो कोई इंसान नहीं हो सकता, यानी जो जरा तो होते हैं ना बिल्कुल ही शायर किस्म के लोग, तो वो तो हर एक को अपना दिल दे बैठते हैं, और वो जो है ना वो किसी को भी, वो कोई भी पसंद आ जाए तो उसको कामिल कह करके छोड़ते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन कुछ होते हैं हमारे जैसे जो जरा सा यानी इल्मी एतबार से ना दोनों चीजों को जो है वो एसेस करते हैं और थोड़ा सा तनकीदी नजर वगैरह रखते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं लफ्ज़ कामिल को सुन करके। ये क्या बद यानी अकीदे की खराबी है। देखो किस इंसान कामिल कह रहे हैं, हालांकि कामिल तो अल्लाह की जात होती है ना। कुछ जो है वो ये कहेंगे कि आज के किसी इंसान को कामिल कह रहे हैं, हालांकि कामिल तो नबी अलैहिस्सलाम की जात थी। ठीक है, तो भाई उनको परेशान ना होने की जरूरत है और ना किसी दूसरे को परेशान करने की जरूरत है। तो कामिल का ये मतलब हरगिज है ही नहीं। ठीक है, अब जो है वो शेख कामिल की अलामात हम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पढ़ते हैं। फरमाते हैं कि अगर किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक रखने का इरादा हो तो पहले दर्जे ज़ेल बातों का इत्मीनान कर लें, जिसमें ये बातें ना हो उससे ताल्लुक कायम ना करें। ठीक है, यानी ये जो इस्लाही ताल्लुक है या बैत का ताल्लुक है तो वो कायम ना करें जब तक ये चीज़ें आप चेक ना कर लें। नंबर 1, जो पीर साहब हैं, पीर दीन के जरूरी मसाइल जानता हो, शरीयत से नावाकिफ ना हो। ठीक है, यानी कोई ऐसे ही जो है ना वो कंप्यूटर इंजीनियर उठ करके जो है ना वो पीर का काम करना ना शुरू कर दिया हो, उसने शरीयत के जो जरूरी मसाइल लिखा है, ये भी नहीं कि शरीयत के सारे मसाइल, बल्कि शरीयत के जो जरूरी मसाइल है ना, यानी जो कि फर्ज आयन के अंदर आते हैं या इल्मुल हाल जिनको कहा जाता है, ठीक है, तो उन मसाइल से है जो है ना वो वाकिफ हो। तो अब हजरत हमारे तो अक्सर जो है वो किसी को अगर इजाजत खिलाफत देते हैं तो पूरा आलिम या तो पहले से हो या उसको पहले पूरा आलिम बनाते हैं फिर उसके बाद उसको इजाजत खिलाफत देते हैं। माशाल्लाह 8 साल का आलिम कोर्स कर लेने के बाद तो जरूरी मसाइल तो कम से कम आ ही जाते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी खैर हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा जो 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 निटी ग्रिटीज होती हैं या उसकी बहुत तफसीलात हैं तो वो ना आती है, ठीक है ना, या वो जो है वो याद ना हो, सारी की सारी जो है वो अजबर ना हो जहन के अंदर, तो वो इसकी इसकी शर्त नहीं है। बल्कि शर्त क्या लिखी कि शरीयत से नावाकिफ ना हो, शरीयत के जरूरी मसाइल जानता। ठीक है, नंबर 2, यानी बेसिकली नंबर 1 से जो है ना वो ऐसे सारे लोग जो है वो आउट हो गए हों, आउट हो जाते हैं कि जो के यानी जिनकी जिंदगी में जो है ना तो शरीयत का इल्म मौजूद है ना शरीयत का अमल मौजूद है, तो बिल्कुल ही इसके अंदर शामिल नहीं है। नंबर 2, उसके अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, जिनका जिक्र इस किताब के शुरू में किताबुल अकायद में आ चुका है। ठीक है, यानी किताबुल अकायद जो बहशती जेवर के अंदर ही इब्तदा में हज़रत थानवी ने लिखी है, तो उसके अंदर बहुत तफसील के साथ जो है ना वो, और आसान अल्फाज में लेकिन तफसील के साथ हजरत ने जो है वो लिख दी है, तो अकायद इनके मुताबिक हो, क्योंकि वो अपनी समझ से नहीं उन्होंने लिखी, अपनी जो है वो मर्जी से नहीं लिखी है, बल्कि कुरान और सुन्नत से ही उनको अखज करके यहाँ पे लिखा है। तो आसानी की खातिर बता दिए कि भाई इसी किताब के शुरू में जाकर के आपको अकायद पढ़ने, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। नीज शरीयत के अहकाम और इस्लाह बातिन के जो तरीके इस किताब में मजकूर हुए हैं, कोई बात इसमें उनके खिलाफ ना हो। यानी खुल करके जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी ना करता हो, या जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं शरीयत के अंदर जो फुकहाए कराम की तरफ से जो मकतूब बातें हैं, ठीक है ना, फराइज वाजिबात और सुनन मुअक्कदा, ठीक है, और क्या चीज़ हराम है क्या चीज़ मकरूह तहरीमी है, तो उनका उन उनकी मुखालफत ना करता हो, उसको पता भी हो जरूरी अहकाम का और वो मुखालफत ना करता हो। अगर वो मुखालफत करेगा ना तो ये अकीदे की खराबी होगी, अकीदे की खराबी कहलाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अहम नुक्ता है जो कि समझने के यानी बड़ी ताल्लुक से जो है ना वो नसीब हुआ है अपने बड़ों से। वो क्या है कि देखें, शेख जो होता है ना वो कामिल वैसा नहीं होता, 100% तो नहीं होता ना, उसके अंदर जो है वो इंसानी बशरी कमजोरियां होती हैं। ठीक है, तो अब शेख से जो है ना वो कभी कोई गलती हो सकती है, गुनाह भी हो सकता है शेख से। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, जो उसके ताल्लुक वाले हैं मुरीद हैं उन्होंने कहा अच्छा शेख साहब से गुनाह हो गया, ओहो अब तो गए, अब तो छोड़ दिया भाई। ठीक है ना, नहीं हो सकता है किसी शेर से गुना, ठीक है, लेकिन दो चीजें होती हैं तो जिनकी बुनियाद पर जो है ना वो शेर के साथ ताल्लुक खत्म, वो क्या है, गुनाह के ऊपर इसरार, यानी गुनाह को हल्का करार देना या गुनाह के खिलाफ हुज्जत बयान करना, उसके यानी उसके हक में हुज्जत बयान करना, ठीक है ना, हुज्जतबाजी करना और कोई ना कोई जो है ना उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन देना कि नहीं नहीं ऐसे ये सही है, ये गुनाह कोई कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। तो अगर उसका ऐसा एटीट्यूड हो जाए ना तो ये भी दरअसल अकीदे की खराबी है एक तरीके से, ये भी अकीदे की खराबी है। और अगर अकीदे का इनकार कर दे तब जो है ना शेर के साथ ताल्लुक तोड़ जाए, अगर किसी जो अहले सुन्ना वल जमात के नजदीक जो तो मुसल्लम अकायद हैं वो उनमें से किसी की का इनकार कर देना फिर शेर के साथ ताल्लुक नहीं रख सकते। लेकिन अगर अमली तौर पर उससे कोई गुनाह हो जाते हैं तो उस बुनियाद पर जो है वो शेर से ताल्लुक तोड़ना जो है ना वो जायज नहीं है। हत्ता के ठीक है अगर नाउज बिल्ला किसी उसमें यानी पड़ गया है गुनाह के अंदर, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, पड़ गया है गुनाह के अंदर तो ठीक है आप उससे दूर हो जाएं, लेकिन अकीदत तो मोहब्बत जो है ना उसके साथ रखें, हो सकता है अल्लाह ताला ने ना मेरे शेर को किसी आजमाइश में डाल दिया, ठीक है, तो उससे वो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमा देंगे उसको। बहरहाल अकीदा जो है ना वो इतना अहम है, इतना अहम है, क्योंकि अकीदे की बुनियाद पर तो ईमान होता है ना, ईमान की बुनियाद तो अकायद के ऊपर ही है, तो इस वजह से अकीदा इज द ये हद फासिल कहते हैं, हद फासिल यानी जो 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 डिवाइडिंग लाइन है ना हमारे और दूसरों के दरमियान वो अकीदा ही है, ठीक है। बदकिस्मती से पिछले बहुत लंबे अरसे से मुसलमानों में अकीदे की अहमियत इतनी कम कर दी गई है या इतनी कम हो गई है कि हर चीज हमारे लिए ज्यादा अहम बन जाती है, अकीदा हमारे लिए ज्यादा अहम बनता है, ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त उम्मत के साथ, ठीक है, उलमा के साथ नहीं, जो आवाम उम्मत की जो आवाम है उनके साथ, ठीक है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि अकायद कुरान सुन्नत के मुताबिक हो और शरीयत की जो अहकाम और इस्लाह बातें तरीके उन उसमें उनको कोई खिलाफ ना रहे, यानी मुखालफत ना करता हूँ उन बातों, पीरी मुरीदी महज पेशे के लिए ना करता हूँ, ठीक है, यानी ये कोई आपके उसकी कमाई के लिए बस ये काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर खैर बहुत सारी तफसील की जा सकती है, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीरी मुरीदी महज पेशे के लिए ना करता हूँ, महज पेशे के लिए ना करता हूँ, ठीक है, तो किसी ऐसे बुजुर्ग का खलीफा मजाज हो कि जिसको दीनदार लोग बुजुर्ग समझते हैं, ठीक है। अब हजरत ने नुक्तों के अंदर ये चौथे मुकाम के ऊपर इस नुक्ते को रखा है, लेकिन अवाम की आसानी की खातिर जो है कि यानी इसको हम पहले पोजीशन के ऊपर भी अगर रखें तो बात समझना शायद आसान हो जाए, कि सबसे पहली चीज जो है ना देखने की वो ये है कि भाई इनको किसी वेल नोन बुजुर्ग से, जो कि यानी ऐसा ना हो कि गार से निकल के आए थे और जो है ना किसी को इजाजत खिलाफत दे करके गायब हो गए उसके बाद, ये मुराद है कि ऐसे ना हो कि कोई उनको जानता ही ना हो, बस वो शक्लो सूरत के बुजुर्ग हों और गार से निकल के आए हों और गार में वापस चले गए हों, जैसे कि शियाओं के जो है वो 12वें इमाम साहब है ना, गायब इमाम जो है ना वो गार में है कहीं ना कहीं, तो अब वो 12वें इमाम साहब जो है निकले किसी को अपना खलीफा बनाए, जैसे खुमैनी साहब के, खुमैनी को जो है वो अपना खलीफा बना करके वापस गार में चले गए, अब किसी को पता ही नहीं वो कहाँ से आए, कौन थे, क्या थे, खुमैनी साहब को उन्होंने इजाजत खिलाफत कैसे दी, कब दी, किसके सामने दी, है ना, बस वो एक दिन जो है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं 12वें इमाम साहब का खलीफा हूँ, मुझे जो है ना वो एक खास अथॉरिटी मिल गई है कि अब मैं जो है ना वो पॉलिटिकल इमामत का भी फरीजा अंजाम दे सकता हूँ। आपको पता है इवन शियाओं में भी हर शिया जो है वो उसको इमाम नहीं मानता, खुमैनी को, नहीं ये खुमैनी किधर से इमाम बन गए, हमारे इमाम साहब वो जो 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 ज्यादा कट्टर शिया है ना वो कहते हैं हमारे इमाम साहब तो गार में है, जब वो गार से निकलेंगे तब बस वही होंगे सब कुछ, हत्ता कि उनको फिर खुदा से भी ऊंचा दर्जा देते हैं और नबियों से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन जब गार से निकलेंगे तब होंगे, अभी ये गार से निकले भी नहीं और ये एक नए साहब जो है वो आकर के इमाम बन करके बैठ गए, तो वो नहीं मानते इसको, जिस तरह यहूदी भी जो है ना जिस तरह यहूदी, राइट, बिल्कुल सेम मामला है दोनों का। जिस तरह यहूदी जो है वो उनके अंदर भी ऐसे हैं जो कि इसराइल की हुकूमत को मानते ही नहीं है, इसराइल के मुल्क को ही नहीं मानते, कहते भाई इसराइल ये तो हम हमारे लिए तो कोई मुल्क है ही नहीं, जब तक हमारा मसाया ना आ जाए ना उस वक्त तक तो हमारे लिए कोई मुल्क ही नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे मुल्क बन गया कि ना मसाया आया और जो है वो मुल्क भी बन गया बगैर मसाया के, ठीक है ना। तो इस वजह से वो ये इसराइल की के मुल्क को मानते ही नहीं, और वो कहते हैं ये तो जायनिज्म है, ये यहूदी, ये यहूदियत नहीं है, ये जायनिज्म है, ये तो सहूनियत है, ये एक अलग चीज है बिल्कुल। यही मामला जो है वो शियाओं के साथ भी है, ठीक है। तो कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये था कि किसी ऐसे बुजुर्ग का खलीफा मजाज हो जिसको के जो दीनदार लोग हैं यानी जो उलमाए कराम हैं दूसरे मशायख हैं वो उसको बुजुर्ग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अहम इस वजह से भी बहुत है क्योंकि पिछली सदी में जो है ना वो मुसलमानों के अंदर बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं इस्लाही तहरीकें पैदा हुई हैं या इस्लाही शख्सियात पैदा हुई हैं कि हम जो है ना वो उम्मत की इस्लाह करना चाहते हैं, हम जो है वो उम्मत को ठीक करना चाहते हैं, हम उम्मत के खैर ख्वाह हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ इस्लाही शख्सियात तो ऐसी थी कि जो कि वाकई बुजुर्गों की तरफ से मामूर थी, ठीक है ना, यानी जो ऐसे बुजुर्ग थे जिनको के उलमाए कराम जो है बुजुर्ग समझा करते थे, तो उन बुजुर्गों ने इनको मामूर किया था कि हाँ भाई आप इस्लाही वाली मेहनत करें, ठीक है। तो वो तो सही है क्योंकि यही तरीका है हमारे दीन के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी भी भाई बल्कि बहुत सारी ऐसी इस्लाही शख्सियात पिछली सदी में रही हैं, और पिछले सदी में शायद जितनी होंगी ना उससे 10 गुना ज्यादा जो है वो पिछले 10 साल के अंदर पैदा हो गई हैं, राइट, इंटरनेट के ऊपर खास तौर पर इस्लाही शख्सियात, ठीक है। यानी सदी के 100 साल के अंदर जितनी इस्लाही शख्सियात उस किस्म की आई होंगी ना बगैर इजाजत के, बगैर बुजुर्गों की खिलाफत के, ठीक है ना। तो उनको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें ना, यानी अगर 100 शख्सियात पूरे 100 साल के अंदर पैदा हुई थी बगैर बुजुर्गों की निस्बत के, बगैर बुजुर्गों की इजाजत खिलाफत के, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कम से कम कर दें आप, उतनी जो है ना वो पिछले 10 साल के अंदर पैदा हो गई, और वो आपको जो है ना वो मीडिया चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और जो है वो रमजान ट्रांसमिशन के ऊपर, और हर जगह जो है ना वो आपको नजर आती है, सुनाई दे रही होती है। उनमें बहुत सारी औरतें भी हैं, ठीक है ना। मजे की बात तो ये भी है कि औरतें भी बैठी हुई होती हैं, किसी ने दुपट्टा जो है वो हल्का सा टिकाया हुआ है, किसी ने जो है वो ज्यादा टिकाया हुआ है, किसी ने हिजाब पूरा का पूरा पहना, वो हिजाब तो नहीं होता स्कार्फ होता है वो पूरा पहना हुआ है, किसी ने जो है वो नकाब भी पहना हुआ है, और वो टीवी के ऊपर आकर के उम्मत की इस्लाह का फरीजा अंजाम दे रही होती है, ठीक है। तो ये नहीं है तरीका, ये पीरे कामिल जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो लोगों ने फिर उनको पीरे कामिल बना लिया इन लोगों को, है ना, किसी ने किसी को, किसी ने किसी को, किसी ने किसी तंजीम को, किसी ने किसी क्लब को, किसी ने किसी ग्रुप को। तो भाई ये नहीं है तरीका ना कि भाई मैं इस्लाह करूंगा, ठीक है ना। नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि किसी की इस्लाह कर सकूं, मैं तो अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरों की कैसे इस्लाह करूंगा, ये मिजाज होना शर्त है। तो फिर कैसे इस्लाह का काम करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ हुक्म के ऊपर करते हैं, बड़ों के हुक्म के ऊपर करते हैं, ये नहीं कि मैं समझता हूं कि मैं दूसरों की इस्लाह कर सकता हूं, ये तो तकब्बुर है ना, ये तो उजुब है ना, ठीक है, कि मैं समझता हूं कि मैं उम्मत की इस्लाह कर सकता हूँ, ठीक है ना। और तकब्बुर तो एटम, ठीक है। तो इस वजह से मशाइख के यहाँ ये सिलसिला हरगिज हरगिज नहीं हो सकता कि मैं समझता हूँ कि मैं दूसरों की इस्लाह कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर से
ना
जबर
समासा पूरी अच्छी दी
होता है, ऊपर से प्रेशर होता है ऊपर से कि तुम करो ये वाला काम, इसी को इजाजत खिलाफत देना भी कहते हैं कि बुजुर्ग देते हैं कि अब आप करेंगे ये वाला काम, आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपने नहीं किया तो आपकी आपकी पकड़ होगी, अगर आपने इस्लाह का काम नहीं किया तो आपसे पूछ होगी क्यों नहीं किया तुमने इस्लाह का काम, ठीक है। तो अवाम के लिए जो है ना वो सबसे आसान क्राइटेरिया वो ये है कि भाई ऊपर से इजाजत खिलाफत है कि नहीं है, और बाकी चीजें जो है वो शरीयत जरूरत शरीयत के जरूरी मसाइल से वाकिफ हो कि नहीं, भाई अवाम को खुद नहीं पता शरीयत के जरूरी मसाइल क्या हैं, तो वो कैसे पीर के को देखेंगे कि उसको जरूरी मसाइल आते हैं कि नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर थानवी अंतो ने लिखा है तो डेफिनेटली सही बात लिखी है कि इतना तो आवाम को भी पता होना चाहिए कि शरीयत के जरूरी मसाइल क्या है। ये और बात है कि आजकल पता है नहीं लोगों को, तो भाई हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि का मसला कोई थोड़ी है, या हमारा हमारा मसला है कि हमें शरीयत के जरूरी मसाइल भी नहीं पता, जैसे औरतों को हैज नफास के मसाइल नहीं पता, ठीक है ना। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है ना, अब इसमें मैं अपनी तरफ से तो ये बात कह रहा, आप लोगों की जुबानी ये बात सुन करके फिर ये बात बता रहा हूँ कि हैज नफास के मसाइल औरतों को नहीं पता, ठीक है ना। अब उससे ज्यादा और कौन सा बुनियादी मसला होगा कि जिससे जो है वो नावाकफियत हो सकती है, ठीक है। बहरहाल ये तो चौथा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट कि उस पीर को भी नेक लोग अच्छा कहते हैं, ठीक है। यानी जो मुआशरे के अंदर नेक लोग समझे जाते हैं तो पीर को भी जो है ना वो लोग अच्छा कहते हैं, ये नहीं कि नेक लोग कह रहे हैं कि वो ये किस किस्म का इंसान है और ये तो बिल्कुल ही आमियाना किस्म की जिंदगी गुजारने वाला है और ये क्या। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो उसको अच्छा कहते हो, ये इसका ये भी मतलब नहीं है कि 100% लोग, इसलिए कि हासिदीन भी बहुत होते हैं दुनिया के अंदर, और जो है ना वो इंतहाई सख्त भी बहुत लोग होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो वो उनके उनके क्राइटेरिया के ऊपर कोई नेक बनता ही नहीं है, कोई नेक यानी नेकी के मेयार कोई उतरता ही नहीं है उनके, तो उन्होंने तो हर एक को बुरा ही कहना है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी ना एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन रखनी चाहिए कि अगर कोई एक मशहूर शख्सियत जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं कोई नेक वेक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बुरा कह रहे, हो सकता है उनके क्राइटेरिया ऐसे हों कि जिनके ऊपर कोई बुरा ही नहीं उतरता, ठीक है। या हो सकता है वो हासिदीन में से, वो हासिदीन तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो उनके क्राइटेरिया पर भी कोई बुरा नहीं उतरेगा। बहरहाल अमूमी तौर पर नेक लोग उसको अच्छा कहते हैं। और छठी और सातवीं जो है इसमें जरा ज्यादा तफसील है, तो ये बल्कि अल्फाज जरा ज्यादा है इसके, तो वो इंशाल्लाह अपना मैं अगली क्लास के ऊपर रखते हैं। अभी दूसरी क्लास का वक्त शुरू हो चुका है, तो चंद मिनटों की ब्रेक के बाद हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं। मिसाली का गुवाही।